दीवा और आर्यांश को मिले हुए पूरा एक हफ्ता बीत चुका था। दीवा को लगा कि उसकी नाराजगी कुछ घंटे या एक दो दिन की है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसके चक्कर में दीवा रोज रेस्टोरेंट जाती थी, लेकिन उसे आर्यांश कहीं दिखाई नहीं दिया। वो उसके बारे में इतनी बार रेस्टोरेंट में पूछ चुकी थी कि अब तो उसे भी शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। दीवा के पास आर्यांश का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था। सुमन माँ ने एक बार उसे अपने घर खाने पर इन्वाइट किया था, तब उसे अपने घर का एड्रेस दिया था। मजबूरन दीवा ने आर्यान से बात करने के लिए उसके घर जाने का सोचा। शिव पहले ही प्रार्थना के साथ वापस मुंबई जा चुका था। दीवा जल्दी उठी और सुबह 7 बजे ही आर्यांश के घर की तरफ निकल दी थी। वो उस गली में पहुंच गई थी, लेकिन उसे ठीक से घर का पता नहीं मालूम था। एक तो मैं इतनी हिम्मत करके यहाँ तक आई हूँ, ऊपर से पता नहीं उसका घर इनमें से कौन सा है। मेरी बातों का इतना बुरा लगा है कि मेरे सामने तक नहीं आना चाहता। मैंने तो वही कहा था जो उसने किया था। कभी ये सोचा है कि मेरे दिल पर क्या बीती थी जब उसने मुझे पूरी भीड़ के सामने बेइज्जत किया था, दीवा झुंझलाकर खुद से बोली। आसपास कोई दिखाई ना देने पर दीवा ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर में बाहर एक आदमी आया। दीवा को पूछते हुए काफी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने झिझकते हुए पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आर्यांश का घर कौन सा है? अच्छा, आप सुमन जी के घर का पूछ रही हैं, वो सामने वाला घर है, उस आदमी ने काफी नरम लहजे में जवाब दिया। दीवा ने उसे थैंक्स कहा और वहां से जाने के लिए मुड़ी ही थी कि वो आदमी पीछे से बोला, क्या आप उनके घर जा रही हैं मैडम जी? दीवा ने उसकी तरफ पलटकर हल्के से सिर हिला दिया था। लेकिन वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, उस आदमी ने उदास स्वर में कहा। क्यों, क्या हुआ? क्या आजकल वो यहां नहीं रहते? दीवा ने जल्दी से पूछा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा था और एक पल के लिए वो डर गई थी कि वो आर्यांश को अब दोबारा कभी नहीं देख पाएगी। ऐसा नहीं है, पिछले 5 दिनों से वो पास के शहर के बड़े हॉस्पिटल में है। सुमन जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और आर्यांश उन्हें वहीं लेकर गया है, उस आदमी ने बताया। क्या उनकी तबीयत खराब हुई थी तो आर्यांश उन्हें लेकर यहाँ के हॉस्पिटल क्यों नहीं आया? दीवा ने हैरानी भरे लहजे में कहा। पहले उसे आर्यांश की फिक्र हो रही थी तो अब सुमन माँ की चिंता सताने लगी। दीवा ने उस आदमी से पूछा, क्या आपके पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर है? फोन नंबर तो नहीं है, लेकिन कौन से हॉस्पिटल में है ये बता सकता हूँ, उस आदमी ने जवाब दिया। दीवा ने उस आदमी से हॉस्पिटल का पता पूछा और तुरंत ही बस स्टॉप जाने के लिए निकल गई थी। कुछ ही देर में उसे बस मिल गई थी और वहां से वो गैंगटॉक जाने के लिए निकल गई थी। दोपहर के करीब दीवा उस हॉस्पिटल के आगे खड़ी थी जिसका पता उसे आर्यांश के पड़ोसी से चला था। रिसेप्शनिस्ट से रूम नंबर पता करने के बाद दीवा तुरंत सुमन से मिलने के लिए पहुंची तो उसे उनके कमरे के आगे बेंच पर आर्यांश बैठा हुआ दिखाई दिया। वो काफी परेशान और थका हुआ लग रहा था। बता नहीं सकता था क्या कि सुमन माँ की तबीयत इतनी खराब है? मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं इसकी हेल्प कर सकती थी, पर नहीं, इसे बस अपने घमंड में रहना है, दीवा ने मायूस स्वर में कहा। दीवा बिना कुछ कहे आर्यांश के पास जाकर बैठ गई थी। उसके बैठते ही आर्यांश ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और बिना किसी भाव के कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, और एड्रेस किसने दिया तुम्हें यहाँ का? तुम्हारे नेबर ने, दीवा ने धीमी आवाज में इतना ही कहा। दीवा को लगा आर्यांश आगे कुछ बोलेगा, लेकिन वो बिल्कुल खामोश था। कुछ पल की चुप्पी के बाद दीवा ने खुद ही पूछा, क्या हुआ था उन्हें? माइनर हार्ट अटैक आया था, आर्यांश ने बुझी हुई आवाज में जवाब दिया। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, फिर भी तुमने उन्हें मेरे पास लाने के बजाय इतनी दूर लेकर आए हो, क्या मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है? दीवा ने भरी आवाज में कहा। तुम्हारा रिश्ता उनके साथ मेरी वजह से जुड़ा था और हम दोनों के बीच अब कुछ नहीं रहा है। दीवा, तुम्हें इतनी दूर नहीं आना चाहिए था, वापस जाओ, सुमन माँ को मैं संभाल लूंगा, आर्यांश सख्त आवाज में बोला। हो गया तुम्हारा, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मैं डॉक्टर से बात करने जा रही हूँ, दीवा ने भी अपना फैसला सुना दिया था। दीवा एक अच्छी कार्डियोलॉजिस्ट थी और उसके काम को देखते हुए उसे संजीवनी हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर की पोजीशन मिली थी। दीवा तुरंत डॉक्टर के पास गई और उसने सुमन की सारी रिपोर्ट्स देखी। दीवा ने वहां अपना इंट्रोडक्शन एक कार्डियोलॉजिस्ट और सुमन के रिश्तेदार के तौर पर दिया था। दीवा की पोजीशन जानने के बाद डॉक्टर खुद उनका केस उसके साथ डिस्कस कर रहे थे। डॉक्टर, आप तो काफी एक्सपीरियंस्ड हैं और देख सकते हैं कि उनकी हालत सर्जरी करने लायक नहीं है। किस्मत अच्छी थी जो स्ट्रोक माइनर था, वरना उनका बच पाना नामुमकिन था, सुमन के अटेंडिंग डॉक्टर ने बताया। पूरी रिपोर्ट ठीक से देखने के बाद दीवा ने डॉक्टर से कहा, मैंने इस तरह की क्रिटिकल सर्जरी पहले भी हैंडल की है, मैं मुंबई रेफर करने की सलाह देती हूँ और उनकी सर्जरी भी वहीं पर होगी। पेशेंट को थोड़ा टाइम देते हैं, ऑब्जर्वेशन में रखेंगे तो एक हफ्ते में उनकी बॉडी सर्जरी करने लायक हो जाएगी, लेकिन फिर भी काफी रिस्क है डॉक्टर, और जान जाने का खतरा है। मुझे नहीं लगता कि उनके फैमिली मेंबर इस बात के लिए मानेंगे, अटेंडिंग डॉक्टर शर्मा ने बताया। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए और अब ये केस मैं देखूंगी, आपकी अथॉरिटी से मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, दीवा ने सख्त आवाज में कहा। इस वक्त वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में थे और वहां किसी भी सीनियर डॉक्टर का आकर किसी केस को हैंडल करना सामान्य सी बात थी। डॉक्टर शर्मा ने उसकी बात पर हल्के से सिर हिला दिया था। उनसे लगभग 2-2.5 घंटे बात करने के बाद दीवा उनकी केबिन से बाहर निकली। उसने देखा आर्यांश अब बाहर वेटिंग एरिया में नहीं था, सुमन के कमरे का दरवाजा खुला था, मतलब आर्यांश वहीं था। दीवा सीधा सुमन के कमरे में चली गई थी।
मैं कह रही हूँ मिस्टर कपूर, मुझे घर ले चली। मुझे नहीं लगता कि मैं अब ज़्यादा जी पाऊँगी और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन मैं हॉस्पिटल के बेड पर नहीं गुजारना चाहती, सुमन ने धीमी आवाज़ में कहा। और किसने कहा कि ये आपकी ज़िंदगी के आखिरी दिन है, दीवा अंदर आते हुए शिकायती अंदाज में बोली। आपको कुछ नहीं होगा और मैं कुछ होने भी नहीं दूंगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है और जो भी रिश्ते मिले उन्होंने कभी मुझे अपना तक नहीं समझा था। सिर्फ आप थीं जिन्होंने कोई रिश्ता ना होने के बावजूद हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार किया था। उसकी बातें सुनकर आर्यांश ने आँखें घुमाई और धीरे से बड़बड़ा कर कहा, अजीब बात है, इस ऐसी सिचुएशन में भी मुझे ताने मारने हैं। आपका केस अब मैं हैंडल कर रही हूँ, थोड़े दिन आराम कीजिए, खुश रहिए और ख़ुद को सर्जरी के लिए तैयार कीजिए। मैं आपकी सर्जरी करूँगी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगी, दीवा ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा। लेकिन, सुमन ने बीच में बोलना चाहा, लेकिन दीवा ने उन्हें चुप करवा दिया था। आपके लिए ज़्यादा बोलना और स्ट्रेस लेना सही नहीं है, आप बस आराम कीजिए, दीवा बोली। दीवा वहीं पर बैठ गई थी और उसने सुमन से काफ़ी देर तक बात की। आर्यांश उनके पास ही खड़ा था लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो सुमन की सर्जरी दीवा से नहीं करवाना चाहता है या फिर दीवा सुमन के मामले में दखल क्यों दे रही है। वो जानता था कि दीवा काफ़ी काबिल डॉक्टर है, अगर वो इस केस को अपने हाथ में लेकर उन्हें बचाने का कह रही है तो वो उन्हें कुछ नहीं होने देगी। दीवा उनके साथ पुरानी अच्छी यादों के बारे में बात कर रही थी। कुछ ही देर में सुमन को नींद आ गई तो दीवा उठकर बाहर जाने लगी कि तभी पीछे से आर्यांश ने कहा, थैंक यू सो मच। दीवा आर्यांश की तरफ पलटी और हैरान लहजे में बोली, तुम मुझे थैंक्स कह रहे हो? मुझे लगा कि तुम मुझे सुमन माँ का केस हैंडल नहीं करने दोगे।
और मैं ऐसा क्यों करूँगा? मुझे पता है कि तुमने पहले भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज को हैंडल किया है। इनफैक्ट मुझे तो खुशी है कि तुम उनका केस हैंडल कर रही हो, आर्यांश बोला। अगर ऐसा था तो तुमने पहले मेरी हेल्प क्यों नहीं ली? तुम पहले भी तो उन्हें लेकर मेरे पास आ सकते थे, यहाँ इतनी दूर आने की क्या ज़रूरत थी? दीवा ने उसे घूरते हुए पूछा। क्योंकि मैं पहले ही उनका चेकअप कराने यहाँ आया हुआ था। क्या डॉक्टर ने तुम्हें ये नहीं बताया कि चेकअप के दौरान ही उन्हें स्ट्रोक आया था? आर्यांश ने बताया। दीवा ने बिना किसी बहस के हल्के से सिर हिला दिया था। वो आर्यांश से इस बारे में भी बात करना चाहती थी कि आखिरी बार उसने अनजाने में आर्यांश का दिल दुखा दिया था, क्या इस वजह से वो अब भी उससे नाराज़ था? फिलहाल ये सब पूछने का सही वक्त नहीं था, तो दीवा जाने के लिए पलट गई थी। कहाँ जा रही हो? आर्यांश ने पीछे से पूछा। अपने लिए रूम बुक करने के लिए जा रही हूँ, कुछ दिन यहीं रुकते हैं और फिर इन्हें लेकर मुंबई चलेंगे, दीवा ने जवाब दिया और फिर बिना रुके वहां से चली गई थी। इस बार आर्यांश ने भी उसे नहीं रोका, वो वहीं कुर्सी पर बैठ गया था और दीवा के बारे में सोच रहा था। दीवा ने बताया था कि सुमन के बारे में उसे आर्यांश के पड़ोसी से पता चला था, इसका मतलब साफ था कि दीवा उससे मिलने के लिए उसके घर तक पहुंच गई थी। जब मैं तुमसे दूर होने की कोशिश कर रहा हूँ तुम मेरे बार बार करीब क्यों आना चाहती हो दीवा? आई होप कि सुमन माँ की सर्जरी के बाद वो ठीक हो जाए और हम दोनों के रास्ते दोबारा कभी ना मिले, आर्यांश मायूस स्वर में बोला। दीवा ने अपने लिए कमरा तो बुक कर लिया था लेकिन वो जल्दबाजी में सुमन से मिलने के लिए वहां पहुंच गई थी। एक दिन तो उसका वहां आसानी से बीत गया लेकिन अगली सुबह उसे अपनी ज़रूरत के सभी सामान की ज़रूरत पड़ रही थी। दीवा सुमन को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहती थी, उसने अपनी ज़रूरत के सामान की लिस्ट बनाई और आर्यांश के सामने कर दी थी। ये क्या है? आर्यांश ने उसे घूरते हुए पूछा। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मेरी बेसिक नीड्स की कुछ चीज़ें हैं जो तुम खरीद कर लाने वाले हो। मैं यहाँ का मार्केट नहीं जानती हूँ और मैं सुमन माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, वहाँ टाइम भी लग सकता है, मैंने हर एक चीज़ डिटेल में लिख दी है, दीवा ने बेपरवाही से बताया। आर्यांश ने उसकी बात पर हामी भरी और लिस्ट को देखा। जैसे ही उसने लिस्ट को पढ़ा उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं। उसने तुरंत लिस्ट को वापस दीवा के हाथ में थमा दिया था। मैं ये सब कभी नहीं लाने वाला, आर्यांश ने तुरंत मना कर दिया था। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास ना करने का ऑप्शन है? पहली बार तो मेरे लिए कुछ खरीदने नहीं जा रहे हो, ड्रामे मत करो, निकलो यहाँ से, दीवा ने उसे पकड़कर धकेलते हुए कहा। लेकिन मैंने इस तरह का सामान तुम्हारे लिए पहले भी नहीं खरीदा है, मुझे अजीब लगेगा, आर्यांश लाचारी से बोला। हाँ तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हें अजीब लगेगा, जितना कहा है उतना करो, दीवा ने लिस्ट को वापस आर्यांश के हाथ में रखते हुए कहा। इस बार दीवा ने अपना कार्ड भी उसे दिया था। अब तुम मुझे एम्बेरस कर रही हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, आर्यांश ने उसका कार्ड लेने से मना कर दिया था। अगर वो दीवा के साथ इस बात पर बहस करता कि वो उसका सामान लाने नहीं जाने वाला है तब भी दीवा उसकी नहीं सुनने वाली थी, ऊपर से वो अपना कार्ड भी ज़बरदस्ती उसे दे देती तो मजबूरन आर्यांश को दीवा का सामान लाने के लिए वहाँ से जाना ही पड़ा। उसे इस तरह बहाने बनाते देखकर और फिर मजबूरी में वहाँ से जाते देखकर दीवा के होठों पर टीजिंग स्माइल उभर आई थी। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, दीवा को अच्छे से पता है कि आर्यांश को कैसे हैंडल करना है, बाकी इनका रिश्ता भी अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले पार्ट पर मिलते हैं।